नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी दूसरा थिस्सलुनीकियों नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस अध्ययन को हम आरंभ करें, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का भी स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि पौलुस मसीही विश्वासियों के तीन गुणों को एक साथ रखता है, प्रेम, विश्वास और धीरज। परमेश्वर के अनुग्रह, ज्ञान और विश्वास में वृद्धि करने पर हम अपने भाई के प्रति प्रेम में बढ़ते हैं और कष्ट एक प्रकार का अनुशासन है जो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करता है। तो मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रभु जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उनके साथ हो, उनके सहायक हो। आज के वचन के द्वारा आप उन्हें हिम्मत और तसल्ली दें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:3, जिसे हमने पिछले अध्ययन में भी पढ़ा था, लेकिन हम इसे पढ़ना चाहते हैं। लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। पद 3-4 में पौलुस एक छोटे से त्रिएकत्व का उपयोग करता है, विश्वास, प्रेम और धीरज। ये भाववाचक संज्ञाएं हमारे द्वारा धरती पर व्यवहारिक रूप अपनाएंगी। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:3 के अनुसार इनको व्यवहार में लेना विश्वास के काम है। उद्धारक विश्वास कर्मों से प्रकट होता है। 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:4 में लिखा है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। उपद्रव अर्थात कष्ट। कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, परंतु कष्ट तो हमें उठाने ही होंगे। इस पृथ्वी पर हम सबको परेशानियों का सामना करना होगा। यदि आप पर कष्ट नहीं है तो आपके साथ कोई तो समस्या अवश्य है, क्योंकि इनके द्वारा परमेश्वर अपने संतान का अनुशासन करता है। धीरज, यह एक अति रोचक शब्द है। धीरज के मूल यूनानी शब्द का अर्थ है नीचे खड़ा होना। अधिकांश जन परेशानियों और कठिनाइयों के नीचे से निकलने का प्रयास करते हैं। एक धीरजवंत मनुष्य उसके नीचे ही रहकर बोझ उठाता है, वह उससे बचना नहीं चाहता है, वह अपने उत्तरदायित्व में मुक्ति पाना नहीं चाहता है। मेरे मित्रों, यह हमारे जीवन के लिए एक दिन प्रतिदिन की बात है। उस युग के रोमी संसार में थिस्सलुनीके की कलीसिया की सच्ची गवाही थी। थिस्सलुनीके एक रोमी नगर था जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, अतः उनका समाचार कोने कोने में फैल गया था। परेशानियों, सताव और कष्टों के उपरांत भी इन विश्वासियों का धीरज और विश्वास अडिग था। वे परमेश्वर के विश्वास में अडिग थे, वे धीरजवंत थे। परेशानियां अनहोनी नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि इस जीवन में हमें परेशानियां उठाना ही होगा। 1 पत्रस की पत्री 4:12 में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनहोनी बात तुम पर बीत रही है। कभी कभी हम सुनते हैं कि विश्वासी कहते हैं, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा होने देता है, औरों के साथ ऐसा क्यों नहीं करता है और ऐसा क्यों नहीं होता है। मेरे प्रियो, यह कहना सुरक्षित है कि यह सच नहीं है। आप कैसा भी कष्ट उठाते हैं, आपके साथ कोई है, आप अकेले नहीं हैं। हम पर कष्ट आना कोई अनहोनी बात नहीं है। पत्रस कहता है, 1 पत्रस की पत्री 4:13 में, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन होना। पत्रस चेतावनी देता है कि कभी कभी विश्वासी स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। वह कहता है पहला पत्रस की पत्री 4:15 में, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न उठाए, अर्थात दुख न पाए। विश्वासी अधिक बातें करने के कारण परेशानी में पड़ सकता है, वह किसी के विरुद्ध कुछ कह सकता है, वह सत्यनिष्ठा नहीं निभाने के कारण सताया जा सकता है। ऐसे कष्ट उठाने से कोई लाभ नहीं है। जी हाँ, यह जीवन में धीरज उत्पन्न करने वाला अनुशासन नहीं है, यह तो आपके ही कर्मों का दंड आप भोग रहे हैं। इसी अध्याय के 4:16 में पत्रस कहता है, यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा कर। धीरज उत्पन्न करने के लिए अनुशासन और दुष्ट के दंड में अंतर है। परमेश्वर अपने संतान के विकास के लिए, उन्नति के लिए उन्हें अनुशासित करता है कि वे धीरज धरना सीखें और भविष्य के लिए आशा रखें। हमें यहाँ बहुत अधिक सुविधा की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सुविधा में होंगे तो हमें प्रभु के आगमन की आशा नहीं होगी। आज परमेश्वर ने बहुतों को आशीष दिया है, उनके पास सब कुछ है, परंतु वे ही परमेश्वर से दूर हैं। वे परमेश्वर के निकटता में नहीं आना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यही कारण है कि आज गरीब और कमजोर लोग जो कष्ट में हैं परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:5 में लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हमारे कष्टों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है, परंतु यह निश्चय ही हमें अनंत काल के लिए तैयार करता है। जब आप और मैं अपने पार्थिव जीवन को देखेंगे, तब हम में से कुछ लोग निश्चय ही सोचेंगे कि हमें और अधिक अनुशासन की आवश्यकता थी। 8 में दुष्ट के दंड का वर्णन आरंभ होता है, तो उसकी प्रस्तावना यहीं से आरंभ हो जाती है। तो आइए हम पढ़ें 2 थिस्सलुनीकियों के पत्री 1:6 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। न्याय करने में परमेश्वर धर्मी है। पौलुस पूछता है, क्या परमेश्वर अधर्मी है? उत्तर है, कदापि नहीं। परमेश्वर जो भी करता है पूर्ण रूप से उचित होता है। वह गलती कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। हम शिकायत इसलिए करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं पाते हैं। परंतु परमेश्वर जो भी करता है उसमें उसका निश्चित उद्देश्य होता है। परमेश्वर महाक्लेश आने देने में भी धर्मी है। यह पापियों का दंड है। 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:7 में हम पढ़ते हैं, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। प्रभु यीशु दंड के साथ आएगा। प्रभु यीशु के आगमन पर दुष्ट को दंड मिलेगा। आइए हम पढ़ें 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:8-9, जहां पर लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। परमेश्वर का वचन स्वर्ग के बारे में बहुत कम कहता है। एक कारण इसका यह भी है कि यह हमारी समझ के लिए अत्यधिक विस्मयकारी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इतना अधिक स्वर्ग लोलुप्त हो जाएं कि पृथ्वी के लिए किसी काम के न रहें। वह चाहता है कि हम अपनी दृष्टि यहाँ के मार्गों पर लगाए रखें। उसके पास हमारे सांसारिक जीवन के निमित्त एक उद्देश्य है और वह चाहता है कि हम उसे पूरा करें। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र के विषय ही कम नहीं कहता, वह भटके हुए की दशा के बारे में भी बहुत कम कहता है। यह दशा ऐसी भयानक है कि पवित्र आत्मा ने उस पर पर्दा डाल रखा है। बदला लेने की लालसा या निष्क्रिय जिज्ञासा को संतुष्ट करने हेतु कुछ नहीं दिया गया है। परमेश्वर जब दंड देता है तो वह बदले की भावना नहीं रखता है, वह केवल अपनी धार्मिकता और पवित्रता को साधने के लिए दंड देता है। जी हाँ, धर्मशास्त्र में नरक के विषय में हमारी जिज्ञासा मिटाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, परंतु हमें चेतावनी देने के लिए पर्याप्त कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि कम कहने का अभिप्राय है कि नरक की वास्तविकता कम है। सच तो यह है कि प्रभु यीशु ने ही सबसे अधिक नरक की चर्चा की है। नरक एक भयानक सच्चाई है, मैं कल्पना नहीं करूंगा, परंतु जो लिखा है वही कहूंगा। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा अर्थात बदला लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। आज नरक के विचार का ठट्ठा उड़ाया जाता है, परंतु इससे यह तो सिद्ध नहीं होता है कि नरक है ही नहीं। कभी कभी हमारा विश्वास हमारी कल्पना होता है। उदाहरण के लिए, जन साधारण का विचार था कि हिटलर युद्ध नहीं करेगा और यूरोप ध्वंस नहीं होगा, परंतु हुआ। यह भी एक विश्वास था कि जापान अमेरिका पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, परंतु उन्होंने पर्ल बंदरगाह को ध्वंस किया। अब मेरे मित्रों, उचित होगा कि हम नरक की सत्यता का सामना करें। प्रभु यीशु एक दिन इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा। पहले तो वह अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर से उठा लेगा, उसके बाद दुष्ट के लिए भयानक समय होगा। जो परमेश्वर को नहीं जानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं अपनाते, वे दंड के भागी होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 3 पद में प्रभु यीशु की प्रार्थना थी, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या आप अपने उद्धार के निमित्त कुछ करना चाहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 29 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर के वचन की यही शिक्षा है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि नरक और दंड की चर्चा करना जनमान्य नहीं है। यहां तक कि विश्वासियों की गवाहियां जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, सब मैं 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 से भरी होती है। मैं सफल व्यवसायिक हो गया, मेरा विवाहित जीवन बच गया, मेरा व्यक्तिगत जीवन बदल गया, प्रभु यीशु के बारे में अधिक नहीं कहा जाता है। आपने कितनी गवाहियां पढ़ी होंगी जिनमें कहा जाता है, मैं एक असाध्य पापी था जो सीधा नरक के मार्ग पर था, मैं खो चुका था, परंतु प्रभु यीशु ने मुझे बचाया। गवाही में कहने वाली मुख्य बात यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया, परंतु यह कि प्रभु ने आपको कहां से उबारा। हमारे उद्धारकर्ता के आने का मुख्य उद्देश्य यही था। वह हमारा उद्धार करने आया था। वह हमें नया व्यक्तित्व देने नहीं आया था या हमें सफल बनाने के लिए नहीं आया था। वह हमें नरक से बचाने के लिए आया था। मेरे प्रियो, यह कहना जनमान्य नहीं है। मनुष्य इसे सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज बहुत ही कम मनुष्य किसी का सामना इस तथ्य के साथ करना चाहते हैं कि वे भटके हुए हैं। मान लीजिए कि किसी इमारत पर जहां आप रहते हैं आग लग गई। एक मनुष्य आपको बचाने के लिए आता है और क्योंकि आप गहरी नींद में सो रहे हैं वह आपको जगाता है और गोद में उठाकर उस जलती हुई इमारत से मकान से बाहर ले आता है। वह आपको पसंद करता है और अपना पुत्र बना लेता है। वह आपको अपने घर में रखता है और आपको अनेक अच्छी अच्छी वस्तुएं देता है। अब यदि आपको लोगों के सामने उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मौका दिया जाता है या आभार व्यक्ति प्रकट करना हो तो आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे धन्यवाद देंगे कि उसने आपको अपना पुत्र बनाया? निश्चय ही आप उसे धन्यवाद देंगे, परंतु क्या आप उसे इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देंगे कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको जलती हुई इमारत से बचाया है? यदि वह आपको मरने से नहीं बचाता तो अन्य सब बातें किसी काम की नहीं थी। मेरे मित्रों, खोए हुओं का दंड आने वाला है। यदि आप उसी श्रेणी में रहना चाहते हैं तो दंड पाएंगे। आवश्यक है कि कोई आपको सच्चाई तो बता दे, और मैं आपको बता रहा हूं। ये खोए हुए मनुष्य कौन है? वे हैं, पहला, परमेश्वर को नहीं जानते वे लोग, दूसरा, हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। मैं पद 9 दोहराता हूं, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। पृथ्वी का न्याय करने के लिए प्रभु का आगमन विश्वासियों को धर्मी ठहराएगा और इस कारण उद्धारकर्ता की महिमा होगी। हम आगे पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए। यदि परमेश्वर ने आपको धन धान्य से पूर्ण किया है और आप प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु मैं उस स्त्री से प्रभावित हूं जो अपना अधिकांश जीवन अस्पताल के पलंग पर थी, परंतु प्रभु यीशु के विषय उसकी गवाही महान थी। निश्चय ही प्रभु उसके द्वारा महिमा पाता था। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय 2 से, जिसका विषय है प्रभु के आगमन के संबंध में विश्व योजना। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद में हमने कलीसिया के उठाए जाने और प्रभु के दिन की चर्चा की थी और महाक्लेश तथा प्रभु का पृथ्वी पर महिमा के साथ आने के बारे में भी देखा था। इस पत्री में मुख्य विषय होगा महाक्लेश, परंतु हम कलीसिया के उठाए जाने पर भी अति उत्तम संदर्भ देखेंगे। पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। आइए हम पढ़ें दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। उसके पास इकट्ठे होने अर्थात कलीसिया का उठाया जाना। इस पद में प्रभु का प्रथम पुनः आगमन है। इस समय दंड नहीं दिया जाएगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही अच्छी बात है कि कलिसिया महाक्लेश या महासताव में नहीं होगी। यह हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु हम अगले अध्ययन में इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अगले अध्ययन में अवश्य ही इस वचन को सीखेंगे और अपने जीवन में आशीषों को ग्रहण करेंगे। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सिर्फ उनके नाम से मन को सुकून मिलता है, उनके चरण पे हो मस्तक, दिल हमेशा कहता है। सिर्फ उनके नाम से मन को सुकून मिलता है, उनके चरण पे मस्तक हो दिल हमेशा कहता है। अच्छे कर्म हो सदा हमसे, शांति की मूरत रहे, संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। मर के जी उठे वो अपनी यार छोड़ गए, मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए। ईश्वर का संदेश